সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন পূজন, শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন পূজন, সেই মোর প্রাণ ধান, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন, সেই মোর প্রাণ ধান, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন, সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছা সিধে, সেই মোর বেদের ধরাম, রসনিধে মোর বাঞ্ছা সিধে, বেদের ধরাম, সেই ব্রত সেই তাপ, সেই মোর মন্ত্র জাপ, সেই মোর ধর্ম করাম, জাপ সেই মোর মন্ত্র জাপ, ধর্ম করাম, অনুকূল হবে বেধে, সে পদে হইবে সিদ্ধি, নিরাখিব এ দুই নয়নে, অনুকূল হবে বেধে, সে পদে হইবে সিদ্ধি, এ দুই শ্রেরূপ মাধুরী রাশি, প্রাণ কুবলিয়া শাশি, প্রফুল্লিতা হবে নিশিদিনে, আশি প্রাণ কুবলিয়া শাশি, হবে নিশিদিনে, তুয়া আদর্শন আহি, গরলে জারলে দেহি, চিরাদিন তাপিত জীবান, আহি গরলে জারলে দেহি, চিরাদিন হাহা রূপ কর দয়া, দেহ মোরে পদ ছায়া, নরোত্তম লইল শরণ, কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া, ಮಂಜರಿ ಪಾದ ಸೇಯಿ ಮೋರ ಸಂಪಾದ ಸೇಯಿ ಮೋರ ಭಜನ ಪೂಜಾನ ಸೇಯಿ ಮೋರ ಸಂಪಾದ ಸೇಯಿ ಮೋರ ಭಜನ ಪೂಜಾನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಧಾ ವೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ರಾಧಾ ವೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಬಲದೇವ ಜಯ ಸುಭದ್ರಾ ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ 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 ಜಯ ಗೌರನಿತಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಯ ಗುರುದೇವ 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 ಜಯ ಗುರುದೇವ ನಿತಾಯಿ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್. ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಶಿಲಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶಿಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೀ ಜಯ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಋಷಿರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ ರಾಧಾಕುಂಡ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೀ ಜಯ ವೃಂದಾವನ್ ಮಥುರಾ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ನವದ್ವೀಪ ಮಾಯಾಪುರ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ಪುರಿ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ ಗಂಗಮಯ್ಯ ಜಮುನಮಯ್ಯ ಕೀ ಜಯ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕೀ ಜಯ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಕೀ ಜಯ ಕಲಿಯುಗ ಪಾವನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಕೀ ಜಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೀ ಜಯ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಗುರು ಆಂಡ್ ಗೌರಾಂಗ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में सबका स्वागत है। तो भक्तों को आश्चर्य हुआ कि आज भागवतम का श्लोक नहीं लिया गया, क्योंकि आज बहुत पवित्र दिन है। हमारे महान आचार्य श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील गौरदास पंडित जो गौड़ीय आचार्य है, इनका तिरुभव दिवस श्रावण शुक्ल द्वादशी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं श्रीमद् भागवतम का श्लोक लूंगा, वो श्लोक उच्चारण भाषांतर तात्पर्य में, और ज़्यादा मैं श्लोक के ऊपर ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, ना मैं रूप गोस्वामी के बारे में ज़्यादा बोल पाऊंगा। तो मैंने विनती किया कि आज मैं इन दो आचार्यों के ऊपर थोड़ा कुछ बोलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि रूप गोस्वामी के बारे में हमें श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें रूपानुग कहा जाता है। मतलब रूप गोस्वामी ने जो हमें भक्ति के अंग दिए हैं, उसको हम हमारे जीवन में फॉलो करते हैं। रूप गोस्वामी के पदचिन्हों पे हम चलते हैं, इसलिए रूपानुग कहते हैं। और हमें प्रभुपाद अनुग भी कहा जाता है, क्योंकि रूप गोस्वामी की शिक्षा सरल रूप से हमको हमारे सामने प्रस्तुत किया श्री प्रभुपाद जी ने, और इसलिए हमें प्रभुपाद अनुग भी कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, तो इसमें ये दोनों को महासेनापति कहा जाता है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, टू बिग जनरल्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो रूप गोस्वामी के वंश का परिचय, श्रील जीव गोस्वामी अपने एक ग्रंथ में देते हैं, लघु वैष्णव तोषणी में, और कवि कर्णपुर जो शिवानंद सिंध के दिव्य पुत्र है वो अपने गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ में रूप गोस्वामी का परिचय देते हैं। श्री रूप मंजरी ख्याता यासिद वृंदावने पुरा स्याद्य रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटतामियात। जो पहले ब्रजलीला में श्री रूप मंजरी नाम से प्रसिद्ध थी वे ही अब श्री रूप गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो रूप मंजरी जो ब्रजलीला में है वही रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो लघु वैष्णव तोषणी में इनके वंश का परिचय आता है। जो जीव गोस्वामी जो उनके भतीजे है, कहते हैं श्री सर्वज्ञ जगतगुरु नामक एक प्रख्यात राजा के रूप में कर्नाट देश के अधिपति पृथ्वी पर विराजमान थे। कर्नाट मतलब आज का जो कर्नाटक राज्य है वही। तो पहले पहले छोटे छोटे राज्यों के भी राजा होते थे। तो श्री सर्वज्ञ जगतगुरु या सर्वज्ञ देव, तो ये कर्नाटक देश के राजा थे। तो उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध देव, और अनिरुद्ध देव के दो पुत्र हुए रूपेश्वर देव तथा हरिहर देव। रूपेश्वर के पुत्र हुए पद्मनाभ देव, और ये पद्मनाभ देव के 18 कन्याएं थी तथा 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्र के नाम है पुरुषोत्तम देव, जगन्नाथ देव, नारायण, मुरारी तथा मुकुंद देव। तो मुकुंद देव के पुत्र हुए कुमार देव। ये कुमार देव बहुत ही सदाचारी व्यक्ति थे, ब्राह्मण वंश के रत्न के समतुल्य थे तथा निरंतर याग यज्ञ याग ऐसे कार्यों में लगे रहते थे। और फिर कुमार देव के भी अनेक संतानें हुई, लेकिन इनमें 3 मुख्य रूप से थी। तो भक्ति रत्नाकर में नरहर चक्रवर्ती एक श्लोक में बताते हैं, सनातन रूप श्री वल्लभ यही त्रय सगोत्र अन्यत्र जे अर्चित अतिशय। तो ये 3 ऐसे तो इनके जन्म के नाम थे। रूप गोस्वामी का जन्म का नाम शायद अमर था, और सनातन गोस्वामी संतोष, और श्री वल्लभ इनका जन्म का नाम अनुपम था। तो ये 3 कुमार देव के दिव्य पुत्र थे। रूप गोस्वामी का जन्म 1493 में हुआ, मतलब चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 7 साल बाद ये आविर्भवित हुए। और श्री रूप तथा श्री सनातन ये दोनों भाई बहुत ही घनिष्ठ थे एक दूसरे से, मतलब एक प्राण के जैसे समान थे। और उन दोनों ने ही एक साथ ही शिक्षा अध्ययन ग्रहण किया। तो उन्होंने अपने गुरु का वर्णन दिया है, सार्वभौम भट्टाचार्य गौड़ देश के विभूषण विद्याभूषण, और सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई विद्यावाचस्पति रसप्रिय परमानंद भट्टाचार्य और वाक चतुर अध्यापक रामचंद्र, इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और ये दोनों भाई किस प्रकार नवाब हुसैन शाह के संपर्क में आए इसके बारे में कुछ लोक परंपरा आती है। तो नवाब हुसैन शाह भाषा के एक गुरु थे, जो उनकी भाषा में मौलवी कहा जाता है। तो इन्होंने नवाब हुसैन शाह ने अपने गुरु मौलवी से पूछा कि मैं सांसारिक जीवन में उन्नति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मतलब मुझे प्रचुर धन ऐश्वर्य राज्य कैसे प्राप्त होता है। तो उन्होंने बोला कि आपके ही राज्य में 2 ब्राह्मण पुत्र है, बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत ही अच्छे स्वभाव के है, अमर और संतोष। तो आप इन दोनों को मंत्री के रूप में नियुक्त करिए, अगर ये मंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं तो आपका राज्य कारभार या राज्य बहुत बड़ा बढ़ सकता है और आपको सांसारिक उन्नति में ये मदद करेंगे। इस तरह फिर जबरदस्ती इन दोनों भाइयों को उन्होंने मंत्री पद दिया। उन्होंने बताया कि अगर आप दोनों मंत्री नहीं बनते तो मैं सब वैष्णव को तकलीफ दूंगा, उनको मैं बहुत ही उनके ऊपर अन्याय करूंगा। तो इन दोनों भाई ये ब्राह्मण परिवार के थे, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, बाकी सब लोग सभी वैष्णव को तकलीफ होने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सहन कर लेते हैं। फिर उन्होंने वैष्णव ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए मंत्री पद स्वीकार किया, और फिर एक प्रधानमंत्री बने और दूसरे अर्थमंत्री बने। तो इस तरह है मंत्री पद स्वीकार किया, और नवाब की जो राजधानी थी बंगाल की उस समय, तो बंगाल का वो नवाब था, राजा था, तो उन्होंने अपनी राजधानी रामकिली को बनाया था। तो ये दोनों भाई रामकिली में वो निवास करने लगे, और ये निवास करते समय इनको बहुत सारे वैष्णव ब्राह्मण इनके पास आते थे और इनका संग करते थे, शास्त्र की चर्चा होती थी। हालांकि तो ये मंत्री पद पे थे, लेकिन इनका ज़्यादातर कार्य होता था शास्त्र का चर्चा करना और कृष्ण कथा में लगे रहते थे, विभिन्न शास्त्रों पे चर्चा करते थे। कर्नाटक से भी अनेक अनेक ब्राह्मण वृंद आते थे, उनकी भी वो बहुत अच्छी तरह से सेवा करते थे। तो जिस समय ये दोनों भाई नवाब के मंत्री का कार्य करते थे, उसी समय चैतन्य महाप्रभु नदिया में संकीर्तन की लीला कर रहे थे, और संकीर्तन की लीला करते समय अनेक पापी तापियों का उद्धार कर रहे थे। जगह मधाई का उद्धार उसी समय हो रहा था। तो इन दोनों भाइयों को महाप्रभु की लीला के बारे में भी बहुत कुछ सुनाई पड़ता था। तो हम देखते हैं कि 20, 21, 22 साल से महाप्रभु संकीर्तन लीला कर रहे थे, तो उस समय इनका उम्र भी 16-17 होगा। 16-17 की उम्र में ही ये मंत्री बन गए थे बड़े। तो वो जब मंत्री थे तो महाप्रभु की लीला के बारे में श्रवण करते थे, तो उनको बहुत ही लगता था कि हम कब महाप्रभु से मिलेंगे और महाप्रभु की लीला में भाग लेंगे, कब हमारे ऊपर महाप्रभु की कृपा होगी। तो इस तरह रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को पत्र लिखा था कि मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो फिर महाप्रभु ने उनको उत्तर में लिखा कि जिस तरह एक विवाहित स्त्री किसी पर पुरुष से प्रेम करती है, उसे आसक्त रहती है, तो वो अपने घर में घर का कामकाज बहुत अच्छी तरह से करती है ताकि पति और घर वालों को संदेह न हो, उसी तरह से आप लोग भी बाह्य रूप से बादशाह का या नवाब का कार्यकलाप या बाहरी कार्य करते रहो और अंतर में श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहो। इस तरह से कार्य करते हुए आपको शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, इस तरह का उत्तर महाप्रभु ने लिखा। तो ऐसे कई बार रूप गोस्वामी महाप्रभु को पत्र लिखते थे, उसमें उनकी कृपा की याचना करते थे और महाप्रभु भी उनका ढाढ़स बनाते थे। तो इस तरह का कार्य हो रहा था। तो जब भी रामकिली ग्राम में वहाँ पर नवदीप के वासी आते थे, नवदीप से ब्राह्मण उनके यहाँ आते थे, तो बहुत ही आदर और सत्कार, आदर और प्रेम के साथ उनका सत्कार किया करते थे। तो भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन आता है, नवद्वीपे होइते आईशे विप्रगण जत कहिते न पारिता सबारे भक्ति कत। नवदीप से जितने भक्त आया करते थे उनके प्रति कितनी भक्ति थी, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसे नरहर चक्रवर्ती लिखते थे। तो श्री रामकिली में श्री रूप गोस्वामी, उस समय तो रूप गोस्वामी नहीं था उनका नाम, तो रामकिली में तो नवाब हुसैन शाह ने भी इनका नामकरण कर दिया था। तो इनका पहला जन्म का नाम संतोष था, तो इनका नाम उन्होंने साकर मल्लिक कर दिया था नवाब ने। और जो रूप गोस्वामी थे जिनका नाम अमर था, उनका नाम उन्होंने दबीर खास, है ना, तो इनका भी नामकरण की विधि होती थी। तो ये दोनों जब भाई राम किले में निवास कर रहे थे, तो इनका ऐश्वर्य बहुत कुछ, उसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में आता है। गौड़े राम केली ग्रामे कोरी लेने वास, ऐश्वर्य सीमा अति अद्भुत विलास, इंद्र सम सनातन रूपेर सभाते आयिषे शास्त्र गगन नाना देश होते, गायक वादक नर्तक आदि कवि गण सर्वदेशी सकले नियुक्त सर्वखन, निरंतर करे न अनेक अर्थ व्यय, कोनो रूपे कर असम्मान नाही होय, सदा सर्व शास्त्रे चर्चा करे दुई जन, अनायासे करे दोहे खंडन स्थापन, बाड़ीर निकट अति निमृत स्थाने ते कदंब कानन राधा शांब कुंड ताते, वृंदावन लीला तथा करये चिंतन, नाधरे धैर्य जो नेत्रे धारा अनुक्षण, श्री विग्रह मदन मोहन सेवाय रतो, सदा खेद उक्ति ताहा कही बेना कतो, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र विहरे नदिया, सदा उत्कंठित तो तार दर्शन लागिया। राधा वृंदावन चंद्र शशि जगन्नाथ सुभद्रा शशि गौर निताय की जाए। तो गौड़ में रामकिली नामक ग्राम में उन्होंने वास किया। उनके ऐश्वर्य की सीमा अत्यधिक अद्भुत थी। श्री रूप और सनातन की इंद्रतुल्य सभा में विषय विविध देशों से शास्त्र ज्ञाता पंडित आते थे। गायक, वादक, नर्तक और कविवृंद जो विभिन्न देशों के थे वहां पर हर समय नियुक्त रहा करते थे, है ना। हर समय ही अत्यधिक धन का व्यय करते रहते थे जिससे किसी भी तरह से किसी का भी अपमान न हो या असम्मान न हो। वे दोनों सर्वदा ही समस्त शास्त्रों पर चर्चा किया करते थे और अत्यधिक सरलता से वे खंडन और मंडन करते थे। घर के समीप ही अत्यधिक एकांत स्थान पर कदम्ब का एक बाग था जिसमें राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण किया था। वे दोनों वहां बैठकर वृंदावन लीला का चिंतन करते थे। उनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं था, तभी निरंतर अश्रुधारा बहती रहती थी। वे लोग सदा मदन मोहन की मूर्ति की सेवा में व्यस्त रहते थे और उनके वियोग में सदा खेद को व्यक्त करते थे, जिसका मैं कितना वर्णन करूं। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र तो नवदीप में विहार कर रहे थे और रामकिली में वे उनके दर्शन के लिए सदा व्याकुल रहते थे। तो भक्ति रत्नाकर में ये नरहर चक्र ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद श्री गौरांग महाप्रभु संन्यास लेते हैं और संन्यास के बाद महाप्रभु पुरुषोत्तम या जगन्नाथपुरी की ओर चलते हैं। इसके बाद महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए तो उनको और दुख और लगा कि अभी तो पता नहीं महाप्रभु संन्यास लिए हैं, पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, हमारा कब महाप्रभु से संयोग होगा, कब महाप्रभु की सेवा करेगा, ऐसा व्याकुल रहते थे और व्याकुल होकर महाप्रभु से प्रार्थना करते थे कि कब हमको आपका दर्शन मिलेगा, क्योंकि वो लोग तो नवाब की सेवा में राम के लिए छोड़ नहीं सकते थे, तो व्याकुल होते थे। तो जब भक्त तो व्याकुल होकर भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान भक्त की प्रार्थनाओं का श्रवण करते हैं। तो महाप्रभु जब संन्यास लेकर नदिया से जगन्नाथपुरी गए तो फिर बहाना बनाकर उन्होंने सोचा कि मुझे और फिर गौड़देश बंगाल जाना है। तो फिर महाप्रभु नीलाचल से बंगाल की ओर आते समय रामकिली जाते हैं। तो भक्तों को आश्चर्य हुआ कि नीलाचल से बंगाल जाने के लिए रास्ते में महाप्रभु रामकिली क्यों जा रहे। तो भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र है, तो उन्होंने सोचा जो भी भगवान की इच्छा हो, लेकिन महाप्रभु की इच्छा थी इन दोनों भाई के ऊपर कृपा करने की, इसलिए महाप्रभु जानबूझकर रामकिली गए जो कि मालदा जिले में आता है। तो वहां पर जब भक्तों ने महाप्रभु वहां पर कहते हैं, महाप्रभु कहे सुनो दबीर खास, तुमी दोई भाई मोर पुरातन दास, आज है ते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ो तोमार दैन्य फाटे मोर मन, दैन्य पत्री लिखी मोरे पाठाले बार बार, सेई पत्री द्वारा जानी तोमार व्यवहार, तोमार हृदय आमी जानी पत्री द्वारे, तोमा शिखाई ते श्लोक पाठायलो बार बारे। तभी जब महाप्रभु जब राम के लिए आए तो दोनों भाई अपने मुख में तृण लेके अत्यंत विनम्र भाव से और अपने जो मंत्री के कपड़े निकालकर एकदम सामान्य सरल कपड़े पहनकर दोनों भाई महाप्रभु के नजदीक आए और दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत दीन भाव से अत्यंत कातरता से वो रोते हुए महाप्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हमारे ऊपर कृपा करिए करके। तब महाप्रभु कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप तो दोनों भाई मेरे पुरातन दास है ना, तो रूप मंजरी और लवंग मंजरी के रूप में उनको जानते हैं ब्रजलीला में महाप्रभु, और आप दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और तुरंत फिर महाप्रभु जो नवाब ने उनको जो नाम दिया था वो नाम बदलकर दोनों को नाम देते हैं, जैसे एक का नाम रूप और दूसरा का सनातन नाम देते। तो इसलिए एक रूप गोस्वामी और दूसरे सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं।
महाप्रभु बोल रहे कि आप दैन्य छोड़िए, आपकी विनम्रता देख के मेरा मेरा मन, मेरा हृदय फट रहा है। तो गौड़ निकटे आशिते नाही मोर प्रयोजन, तो महादुहा देखीते मोर इहा आगमन, एई मोर मनेर कथा केह नाही जाने, सबे बले केन आयला राम केली ग्रामे, भालो हैल दुही भाई आयला मोर स्थाने, घरे जाओ भय किछु ना करी हम मने, जन्मे जन्मे तुमी दुई आमार किंकर, अचिराते कृष्ण तो माय कोरिबे उद्धार। तो इस तरह महाप्रभु बोलते हैं कि जन्मे जन्मे तुमी दुई भाई अमार किंकर, अचिरात कृष्ण तोमाय करिबे उद्धार। तो महाप्रभु ने उनको बोला कि चिंता मत करो, आप इस नवाब से भय मत रखो कि नवाब हमको क्या करेगा वगैरह, आप बस अभी घर जाओ और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो। भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं उनसे कि प्रार्थना करो और तुरंत ही अचिराते तुरंत ही आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी। तो इस तरह महाप्रभु उनको उद्देश्य देते हैं। इसके बाद महाप्रभु फिर चले जाते, उसके बाद महाप्रभु फिर कन्हैया नर्सला जाते हैं और कन्हैया नर्सला में महाप्रभु वहां पर भगवान का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि सर्वप्रथम महाप्रभु को जो कृष्ण का दर्शन हुआ वो कन्हैया नर्सला में हुआ। तो इसके बाद फिर दोनों को जब दीक्षा महाप्रभु से नाम प्राप्त होता है तो फिर वो कुछ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला के अपना जो उन्होंने जो नवाब के पास रहकर जो उनको लगा कि हम अशुद्ध हो गए हैं तो पुनश्चरण विधि करके ले लेते हैं। और फिर रूप गोस्वामी नवाब से बात करके बोलते कि अभी मैंने बहुत सेवा किया है, अभी मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ। और फिर नवाब से बहुत कुछ धन प्राप्त करते हैं और वो धन को लेकर पूरी बड़ी नाव भरकर सोने के सिक्के उनको प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर थे वो, तो बहुत प्रचुर मात्रा में उनको धन प्राप्त होता है। और फिर इस धन को रूप गोस्वामी 50% ये धन ये वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं और 25% धन अपने जो रिश्तेदार थे उनको देते हैं और 25% धन रखते हैं कुछ भविष्य में कुछ आपत्ति के लिए। और इसमें से विशेष करके 10,000 रुपये वो एक वनिक मतलब कोई मर्चेंट को क्या बोलते, व्यापारी, किसी व्यापारी के पास रख देते हैं ताकि भविष्य में सनातन गोस्वामी के काम आए करके, क्योंकि रूप गोस्वामी ने तो परमिशन लिया था राजा से लेकिन सनातन गोस्वामी परमिशन नहीं ले पाते थे, क्योंकि वो बोले कि ठीक है दोनों भाई में से एक भाई तो अभी मेरे पास रहो। तो उनको पता, उनको लगा कि भविष्य में सनातन गोस्वामी सनातन के मतलब बंदी से मुक्ति के लिए यह धन काम आएगा, ऐसे उनको लगा। तो फिर इसके बाद रूप गोस्वामी ने सुना कि महाप्रभु वृंदावन की तरफ यात्रा पर आए हैं, तब समय नष्ट किए बिना अपने छोटे भाई अनुपम को साथ लेकर वे निकल पड़े। शीघ्र चलते हुए श्री रूप गोस्वामी अनुपम के साथ, अनुपम उनके छोटे भाई थे और सनातन उनके बड़े भाई, तो अनुपम के साथ प्रयाग आप पर पहुंचे। तो वहां पर उन्हें महाप्रभु के दर्शन हुए। उस समय महाप्रभु बिंदु माधव के दर्शन करने जा रहे थे, लाखों लोग महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दोनों भाइयों ने मतलब रूप और अनुपम ने दोनों भाइयों ने दूर से ही महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। और फिर इसके बाद महाप्रभु एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर भोजन प्राप्त करने के लिए आमंत्रित हुए थे। तो उसी समय रूप और अनुपम उन्हीं ब्राह्मण के घर पर वहां पर जाकर उनसे मिले। दोनों भाइयों ने जो ही महाप्रभु के चरणों की वंदना की तभी महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को धरती से उठाकर दृढ़ता से उनका आलिंगन किया और सनातन के बारे में समाचार पूछने लगे। तो स्वरूप ने सनातन का सारा समाचार उन्हें सुनाया। वह सुनकर महाप्रभु ने कहा सनातन की शीघ्र ही बंधन से मुक्ति होगी। तो क्योंकि सनातन गोस्वामी वहां पर ही राजा का कार्य कर रहे थे, रूप गोस्वामी अनुपम ही दोनों जाकर महाप्रभु को प्रयाग में मिले और वहां पर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के बारे में पूछा क्या है और फिर बोला कि चिंता मत करो, सनातन भी शीघ्र ही बंधन से, सनातन की भी बंधन से मुक्ति होगी। तो उस समय शुद्ध अद्वैतवादी पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभ भट्ट या वल्लभाचार्य प्रयाग के अडाइला ग्राम में रहा करते थे। वे गौर सुंदर के दर्शन हेतु उन दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर पर आए थे। वल्लभ भट्ट ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। इसके उपरांत वे दोनों कृष्ण विषय चर्चा करने लगे। कृष्ण की चर्चा में महाप्रभु प्रेमावष्ट हो गए, परंतु भट्ट के समक्ष संकोच अनुभव करने के कारण उन्होंने प्रेम भाव प्रकट नहीं किया। फिर महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट से रूप और अनुपम का परिचय कराया और यह सुनकर वल्लभाचार्य रूप का आलिंगन करने के लिए उठे। फिर रूप गोस्वामी और अनुपम को बोले कि नहीं, हम अछूत है, हमने नवाब की सेवा करने से हम लोग अछूत बन गए। हम लोग मतलब अभी हम लोग आलिंगन करने के लायक नहीं, हमें मत छुओ। आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो आचार्य हैं, हमें मत छुए। तो यह बात सुनकर वल्लभ भट्ट विस्मित हुए। तो महाप्रभु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको बोला नहीं, ये तो अछूत हो गए हैं, आप इनका आलिंगन मत करिए। तब वल्लभाचार्य ने कहा, इन दोनों के मुंह से सतत कृष्ण का नाम आ रहा है, तो ये कैसे अछूत हो सकते हैं, ये तो सर्वोत्तम है। दुहार मुखे कृष्ण नाम कोरी छे नर्तन, यही दुई अधम नहे हय सर्वोत्तम। तो वल्लभाचार्य बोले इनके मुख से सतत कृष्ण का नाम आ रहा है और कृष्ण के नाम में नर्तन कर रहे हैं, ये अधम नहीं हो सकते, ये तो सर्वोत्तम है। तो इस तरह वल्लभाचार्य इनकी महानता समझे। इसके बाद वल्लभाचार्य महाप्रभु को निमंत्रित करके अपने घर अडाइला गांव में नाव से लेकर वापस आए और उनके साथ फिर रूप और अनुपम भी थे। वहां पर महाप्रभु ने रूप और अनुपम को अपने भोजन का अवशेष प्रदान किया। तो वहां पर दक्षिणात ब्राह्मण के घर में भोजन प्राप्त करने के बाद वल्लभाचार्य बोले कि आप मेरे घर में भी आइए, और फिर रूप और अनुपम बोले कि आप इनके साथ चले जाइए। तो इस तरह महाप्रभु भी फिर उनके घर गए और वहां पर महाप्रभु ने रूप और अनुपम को अपना भोजन का अवशेष प्रदान किया। फिर महाप्रभु रूप और अनुपम के साथ प्रयाग फिर लौट आए। प्रभु के दर्शनों के लिए अनेक लोगों की भीड़ लगी थी। फिर इस भीड़ को देखकर महाप्रभु रूप और अनुपम को साथ लेकर एकांत में दशाश्वमेध घाट में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कृष्ण चर्चा करने लगे। कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सबा शिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। तो दोनों भाई के साथ दशाश्वमेध घाट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व की चर्चा की और रूप गोस्वामी को इनके बारे में सब बताया। श्री रूप के हृदय में शक्ति का संचार करके महाप्रभु ने उन्हें सभी तत्वों की शिक्षा देकर प्रवीण बना दिया। मुझे लगता है 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट पर प्रयाग में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। तो चैतन्य चरितामृत में इसका सुंदर वर्णन आता है रूप शिक्षा के नाम से। चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह रूप गोस्वामी की शिक्षा दी, रूप शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। फिर मैंने भक्ति रस का सामान्य दिग्दर्शन या सामान्य ज्ञान आपको प्रदान किया है, तुम विस्तृत रूप से इसका वर्णन करो। आप चिंतन भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहो, आपको स्फूर्ति आती रहेंगी और महाप्रभु भगवान कृष्ण आपको भक्ति के बारे में और ज्ञान प्रदान करेंगे और इस भक्ति का ज्ञान का आप भक्ति तत्व के ऊपर आप पुस्तकों का निर्माण करिए। इसके उपरांत महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को वृंदावन जाने को कहा और फिर महाप्रभु पूरी धाम के लिए चले गए। दोनों भाई वृंदावन की तरफ यात्रा करने लगे और महाप्रभु वाराणसी की तरफ चले गए। तो महाप्रभु जिस समय वाराणसी में तपन मिश्र के घर पर रह रहे थे, उसी समय श्री सनातन गौर राजा के कारागार से पलायन करके वन मार्ग से अनेक कष्ट सहन करके वाराणसी में महाप्रभु को आकर मिले। तो रूप गोस्वामी प्रयाग में मिले थे और सनातन गोस्वामी उनको वाराणसी में आकर मिले और महाप्रभु सनातन को देखकर परम आनंदित हुए और 2 महीनों तक वाराणसी में रहकर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। ये भी सनातन शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद फिर महाप्रभु ने 2 महीने वहां पर सनातन गोस्वामी को संग दिया और फिर कहा कि आपके भाई को मैंने वृंदावन भेज दिया है, आप भी वृंदावन जाइए और वहां पर प्रभु गोस्वामी के साथ अनेक अनेक दिव्य कार्य करिए और भगवान कृष्ण की जो लीला स्थली है उसको उजागर करना है, ग्रंथों का अध्ययन ग्रंथ लिखना है, मंदिरों का निर्माण, तो बहुत कुछ कार्य इन दोनों भाई को दिया। जब सनातन वृंदावन की तरफ चल पड़े तब श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन से गौड़ देश होकर पुरी की तरफ यात्रा की, क्योंकि उनको पता चला कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं, तो फिर उन्होंने वृंदावन से बंगाल की तरफ जाते हुए नीलाचल की यात्रा की। तो श्री रूप गोस्वामी क्रमशः काशी आ पहुंचे, वहां पर तपन मिश्र, चंद्रशेखर आचार्य और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण एवं अन्य भक्तों के साथ क्रमशः रूप तथा अनुपम का मिलन हुआ। तपन मिश्र इन्हीं के ही पुत्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है। तपन मिश्र ने श्री रूप से श्री सनातन से मिलने का वृत्तांत और प्रकाशानंद सरस्वती के उद्धार आदि का वर्णन किया। वह सब सुनकर श्री रूप बहुत प्रसन्न हुए। 10 दिनों तक श्री रूप काशी में रहकर गौड़ देश की ओर चले गए। तो जब रूप गोस्वामी वहां पर जब वापस आए प्रयाग में, तब फिर उन्होंने ये चंद्रशेखर आचार्य आदि भक्तों ने उनको किस तरह महाप्रभु ने वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार किया और वहां के भक्तों का उद्धार किया, इसका वर्णन किया। तो फिर महाप्रयाग से निकलकर रूप गोस्वामी अभी बंगाल जाने के लिए तैयार हुए, तो श्री रूप के अनुपम के साथ गंगा तट पर आकर पहुंचते ही अचानक उनके छोटे भाई की वहां पर गंगा प्राप्ति हुई, तो मृत्यु हो गई। तो श्री रूप दी फिर रूप गोस्वामी वहां पर 10 दिन तक रहे और 10 दिन के बाद फिर वो नीलाचल की ओर जाने लगे। श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन धाम में रहते हुए कृष्णलीला विषयक एक नाटक को लिखना प्रारंभ कर दिया था। मार्ग में चलते चलते ही वे कर्चा में कर्चा के आकार में घटनाओं को लिपिबद्ध करते थे। मार्ग में गंगा तट पर भाई अनुत्तम की गंगा प्राप्ति के होने के बाद उपरांत वे गौड़ देश में आकर कई दिनों तक रहे और तब नीलाचल की यात्रा आरंभ की। चलते चलते वे उड़ीसा के सत्यभामापुर नामक गांव में आए और एक रात में वहां पर आश्रम विराम किया। तो सत्यभामापुर में ही वहां पर उनके स्वप्न में सत्यभामा भगवान की जो पट्ट रानी सत्यभामा उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मेरा नाटक अलग से लिखो, मतलब मेरा वास द्वारका में है और द्वारका की लीला और वृंदावन की लीला आप अलग अलग नाटकों में लिखिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो विदग्ध माधव ये भगवान वृंदावन की लीला का ग्रंथ है और ललित माधव जो ग्रंथ है वो भगवान की जगह द्वारका की लीला का वर्णन उसमें है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सत्यभामा देवी का भी उनको आश्रम प्राप्त हुआ। तो ऐसे उड़ीसा फिर बंगाल से उड़ीसा और उड़ीसा से वो नीलाचल जगन्नाथपुरी में आ पहुंचे। तो नीलाचल में हरिदास ठाकुर की कुटिया में निवास कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने हरिदास ठाकुर को देखा उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और वहां पर वो दोनों रह रहे। श्री हरिदास ठाकुर ने अत्यधिक आदर के साथ रूप गोस्वामी को अपनी कुटिया में रखा। महाप्रभु का प्रतिदिन वहां पर आने का नियम था। महाप्रभु हर रोज जगन्नाथ हरिदास ठाकुर को आकर मिलते थे और जैसे हम देखते कि हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो अपने को अछूत मानते थे और उन्होंने कभी भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किया। तो इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो भी जगन्नाथ जी से अभिन्न है, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, तो स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में हरिदास ठाकुर को रोज आकर मिलते थे। तो महाप्रभु का एक नियम था कि जगन्नाथ जी का उपल भोग, शायद दोपहर का भगवान का जो उपल भोग होता था उसका दर्शन करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में आते थे। तो आज भी महाप्रभु हरिदास ठाकुर कुटिया में आए तो श्री रूप ने महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा कि रूप गोस्वामी आपको दंडवत कर रहे हैं। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से मिलने के पश्चात रूप गोस्वामी को पकड़कर उनके साथ आलिंगन किया। रूप गोस्वामी अत्यधिक दीनता व्यक्त करने लगे। तो जब भी महाप्रभु रूप गोस्वामी को दंडो आलिंगन करते थे, उनको बहुत ही ऐसे दीनता लगता था कि हम तो अछूत है ना, लेकिन ये महाप्रभु की कृपा है कि महाप्रभु हमें आलिंगन कर रहे हैं। तो इस तरह कार्य चल रहा था, महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हो रही थी। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कुछ दिनों के बाद जीव गोस्वामी भी आकर उनको मिले। एक बार जीव गोस्वामी उनको ना पंखा कर रहे थे, तो वहाँ पर वल्लभाचार्य आकर उनको मिले। तो रूप गोस्वामी उनको बोले कि मैंने भक्ति रसामृत ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया है, तो प्रारंभिक कुछ श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो बताइए। तो कुछ श्लोक सुनाए, तो वल्लभाचार्य बोले कि इसमें शोधन करने की आवश्यकता है। तो ये सुनकर जीव गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, फिर वो जमुना में स्नान करने के लिए गए। तो जीव गोस्वामी भी पानी लाने के बहाने वहाँ पर गए, और वहाँ पर वल्लभाचार्य के साथ उन्होंने वाद विवाद किया कि बोले कि मेरे गुरुजी रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखे उसमें कैसे दोष हो सकता है। तो बहुत कुछ वाद विवाद के बाद उन्होंने मान्य किया कि नहीं, ये सही है। फिर जीव गोस्वामी वापस आए, थोड़ी देर के बाद वल्लभाचार्य वहाँ पर बोले, आपका शिष्य कौन है, ये तो बड़ा विद्वान पंडित है, इसने मुझे पूरी तरह से समझा दिया कि आपने जो श्लोक लिखा है वो ठीक से, मतलब उसमें कोई दोष नहीं है। तो फिर वल्लभाचार्य जाने के बाद रूप गोस्वामी बड़े रुष्ट हो गए, बोले वल्लभाचार्य हमारे गुरु तुल्य है, आपने इनके साथ वाद विवाद करके उनको हरा दिया, ये तो मेरे ऊपर वो करुणा कर रहे थे, तो छोटी सी बात आप सहन नहीं कर पाए, और इसलिए आप वृंदावन में रहने के लायक नहीं है, आप तुरंत वृंदावन छोड़ के चले जाइए, जब आप में नम्रता आएगी आप वापस आ जाना। तो फिर बड़े दुखी हो गए जीव गोस्वामी, बोले अभी क्या किया जाए। फिर वहाँ से वृंदावन से निकले, नंदग्राम गए। तो नंदग्राम में एक पुराना मंदिर था, पुराने मंदिर में उन्होंने अपना अन्न पानी त्याग कर दिया, उधर ही रहने लग गए, रोने लग गए। तो फिर वहाँ के भक्तों ने, नंदग्राम के भक्तों ने, वासियों ने सनातन गोस्वामी को बताया कि ये कोई ब्राह्मण बालक है, कई दिनों से खाया पिया नहीं, रो रहा है, उसका शरीर एकदम ये हो गया है, उसका हाल बेहाल हो गया है, तो आप जाके देखिए कौन है हो। तो सनातन गोस्वामी वहां पर आके देखते थे, अरे तो जीव गोस्वामी, ये तो जीव है। तो अनुपम के बेटे थे वो जीव गोस्वामी, तो उन्होंने उनको उठाया, उनको शांत किया, और फिर उनको लेके वृंदावन आए, उनको बाजू में रखा, और फिर रूप गोस्वामी से चर्चा करने लग गए। बोलते बोलते उन्होंने बोला कि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जीवदया नहीं कर रहे हैं। बोले क्या जीवदया नहीं कर रहा हूं मैं? तो बोले कि जीव है ना, आप हमारा ये भतीजा है ना, वहाँ पे मैंने आपके पास भेजा था, आपने उनको आपकी सेवा से निकाल दिया है, तो ऐसा ठीक नहीं है, आप उनको फिर से आपकी सेवा में लगा दीजिए। फिर बड़े भाई के अनुग्रह पे रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को फिर अपनी सेवा में रखा, क्योंकि तो उनका शरीर बहुत ही क्या उसको बोलते हैं कि निकृष्ट हो गया था, वो कई दिनों से खाना और पानी नहीं पीने के कारण। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सुश्रंथ उन्हें दिए, बोले आप इसका एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह उनकी सेवा में लगाया। कैसे मुझे प्राप्त होंगे? तो एक बार ऐसे ही बैठ के एकदम दुखी थे, तो एक पिनाद मदन मोहन इन देवों को यहाँ पर प्रकट करने की मुझसे नहीं हो रहा, बोले आइए मैं आपको एक जगह लेके। ये मुख्य मुख्य ग्रंथ का वर्णन आता है यहाँ पर, एक श्री हंस द्रिका और लघु भागवतामृत, तो ये मुख्य मुख्य ग्रंथ है रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित। दूध चीनी चावल कहाँ से प्राप्त होगा ऐसा मन में विचार आया, तो स्वयं राधा रानी एक छोटी बालिका का रूप धारण करके दूध चीनी और चावल लेके आई। बोले गोसाई आप लीजिए और इसे खीर बनाइए। तो कई बार ऐसा सुना जाता है कि स्वयं राधा रानी ने खीर बनाई, कई बार ये सुनाई पड़ता है कि रूप गोस्वामी ने बनाई, जो भी हो, तो बहुत सुंदर खीर बनाई गई और फिर सनातन गोस्वामी भगवान को ऑफर करने के बाद सनातन गोस्वामी की दी गई। तो खीर का स्वाद इतना सुंदर था। तो फिर रूप गोस्वामी बोले कि ये वो छोटी बालिका आई थी, उसने खीर बनाई है। तो बोले अरे वो बालिका नहीं थी, वो राधा रानी थी, है ना। तो बोले कि आगे से आप ऐसी इच्छा मत करिए, राधा रानी को सेवा में मत लगाइए। तो इस तरह बहुत सुंदर सुंदर लीला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ब्रज में रह के प्रकट कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी एक ही परिवार के हैं, और फिर उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी आ गए, और ब्रज में ये छह गोस्वामी साथ में रहकर कृष्ण चर्चा करते थे और बहुत ही सुंदर उनका जीवन चल रहा था। तो इस तरह ये रूप गोस्वामी हैं, इन्होंने भक्ति रसामृत ग्रंथ लिखा है जिसमें भक्ति के सारे अंगों का वर्णन है, किस तरह साधना भक्ति की जाए, किस तरह वैधि साधना भक्ति, रागोलांग साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति सुंदर वर्णन किया है। और इसी ग्रंथ के आधार पर आज सब हम भक्ति कर रहे हैं और प्रभुपाद जी ने भी इस ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में भाषांतरित किया। इसकी समरी रूप भक्ति रसामृत सिंधु में करीबन 2000 श्लोक है, प्रभुपाद जी ने हमको समरी दिया है। और प्रभुपाद जी बोले कि ये ग्रंथ आने वाले 10,000 साल के लिए सब हमको भक्ति के भक्ति किस प्रकार किया जाए इसको मार्गदर्शन करेगा। तो इस तरह रूप गोस्वामी का हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा अनुग्रह है। तो अभी समय हो गया है, मैं गौरीदास पंडित के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन संक्षिप्त में गौरीदास पंडित का वास अंबिका कालना में था। एक बार रूप चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहाँ उनके घर पे आते हैं तो वो उनको बोलते कि आप मेरे घर में ही रहिए और यहाँ से अभी मत जाइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो बोले नहीं नहीं हमको तो जाना है, प्रचार करना है। बोले नहीं नहीं आप इधर ही रहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने खुद का और नित्यानंद प्रभु का हूबहू मतलब एज इट इज विग्रह बनाया, सेम हाइट सब कुछ एज इट इज। बोला कि ठीक है अभी ये विग्रह यहाँ पर रहेंगे, विग्रह की सेवा करो, विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो बोले नहीं नहीं आप रहिए। तो फिर विग्रह जाने लगे तो विग्रह को रोका उन्होंने, तो महाप्रभु विग्रह बन गए। बोले अरे दो सेठ यहाँ पर है, आप एक स्वेट को स्वीकार करिए। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहां पे रहे। अगर हमें साक्षात चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु 5 साल पहले कैसे थे अगर उसका दर्शन करना है तो जरूर हमें अंबिका कालना जाना होगा। वहां पर आज ही अर्चा विग्रह बहुत सुंदर अर्चा विग्रह है। तो गौरीदास पंडित उनकी सेवा करते थे। गौरीदास पंडित ब्रजलीला में कृष्णा में सुबल सका थे और इस तरह उनकी बहुत सुंदर सुंदर लीला होती थी। एक बार बहुत भक्त लोग वहां पर संकीर्तन करने आए तो ये दोनों विग्रह उस संकीर्तन में चले गए। अरे विग्रह कहाँ गए करके उन्होंने हाथ में छड़ी लेकर के पीछे गए और फिर महाप्रभु को और चैतन्य नित्यानंद प्रभु को छड़ी लगाकर वापस लाया। फिर वहां पर संकीर्तन करने देते नहीं, आज उनके वंश के लोग वहां पर सेवा कर रहे हैं, कोई भी वहां पर संकीर्तन करने देते नहीं, बोलते यहाँ संकीर्तन नहीं करने का क्योंकि मैं तो गौर निताई अवला गौर निताई चले जाएंगे। और जिस तरह बांके बिहारी का दर्शन होता है ना, हर सेकंड में वहां पर पर्दा लगाया जाता है, तो उसी तरह वहां पर वहां के जो पुजारी आज के विद्यमान पुजारी है हर सेकंड में वहां पर पर्दा लगाते हैं। एक सेकंड के बाद पर्दा लगाते हैं, दूसरे सेकंड में दर्शन होता है। केवल आरती के समय वहां पर पर्दा लगता नहीं है। अगर हम शाम के समय गौर आरती के समय जाएंगे तो हमको निरंतर आधा घंटा 15-20 मिनट वहां पर दर्शन होता है भगवान का। तो इस तरह साक्षात गौर निताई अंबिका कालना में वहां पर उपस्थित है। हम जब भी हम लोग अगर हम जाते हैं मायापुर तो अंबिका कालना जाना चाहिए। ठीक है, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री गौरीदास पंडित की जय। तो मैंने 10 मिनट थोड़ा ज्यादा ले लिया है। हरे कृष्ण।